الاثنين في تفسير غطى عرف الهرعي يا فيني پڑھنے کی سورہ کے بس اس طرح سے پڑھیں گے تو ڈلیوری میں آسانی ہو جائے گی اور فلاں ہو جائے گی. آپ دیکھیں تو صحیح کہ اس کے مضامین کتنے شدید ہیں اور ہم کن چیزوں کے لیے کیا استعمال کر لیتے ہیں. سورت مریم آیت نمبر 66 سے اینڈ تک. ویقول الانسان, اور کہتا ہے انسان, کیا کہتا ہے, اِذَا مَا مِتُّ, کیا جب میں مر جاؤں گا, لَسَوْفَ, البتہ ان قریب, کیا واقعی, ان قریب, اُخْرَجُ, میں نکالا جاؤں گا, حَيَّا, زندہ کر کے. کہ انسان سوچتا ہے, انسان کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو میں واقعی دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا, کیا ایسا ہو سکتا ہے, تم یہ کہنا چاہتے ہو. ہاں کمون, کیسے ہو سکتا ہے ایسے, یہ کون کہتے تھے, مشرکین مکہ یہ بات کہا کرتے تھے اور آج تک بھی انسان ہیں اسی زمین کے اوپر جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کیسی آپ باتیں کرتے ہیں. اور بس یہی پہ جو یہ ہو گیا نا, جو خوشی اور غمی مل رہی ہے اور ایسے ہو رہا ہے, یہی ہے اصل میں قیامت. یہ کوئی قیامت ویامت کچھ نہیں ہے. کہتے ہیں جب ہم چورا چورا ہو جائیں گے, جب ہماری ہڈیاں بھی اس کا بھی چورا بن جائے گا, تو کیا پھر ہم کھڑے کیے جائیں گے. یہ کیسی باتیں کرتے ہیں. صحیح حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے اور اس کو یہ لائق نہیں ہے کہ وہ مجھے جھٹلائے. ٹھیک ہے, اس کو یہ لائق نہیں ہے, اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ یہ مجھے جھٹلائے. اور اس کے لائق نہ تھا, مجھے ابن آدم ایزا دے رہا ہے اور اسے یہ لائق نہیں تھا اس کا مجھے جھٹلانا. تو یہ کہتا ہے کہ جس طرح اللہ نے میری ابتدا کی اعادہ نہ کرے, ابتدا کی اسی طرح اعادہ نہیں کرے گا. حالانکہ جس نے ابتدا کی کیا وہ اعادہ نہیں کر سکتا, کیا وہ دوبارہ نہیں بنا سکتا. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیا, اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل, کیا بھلا نہیں یاد کرتا انسان کہ بے شک ہم نے پیدا کیا اس کو اس سے پہلے بھی, ولم یک شیئا, اور وہ کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. کیا انسان کو وہ وقت یاد نہیں ہے کہ جب وہ کوئی بھی چیز نہیں تھا اور ہم نے اس کو پیدا کر دیا, تو پھر دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیز کبھی انسان کے ذہن میں کسی کے آ سکتی ہے کہ پتہ نہیں واقعی کھڑے ہونا ہے کہ نہیں, آج تک تو کبھی نہیں زندہ ہو کے کوئی کھڑا ہوا, کبھی نہیں ایسا ہوا. تو اس وقت انسان یہ سوچے کہ کیا اس کو وہ وقت بھول گیا جب وہ تھا ہی نہیں. ہم کہاں تھے 1900 میں, ہم کہاں تھے, ہم میں سے کوئی ایک بھی نہیں تھا, ایک بھی نہیں تھا ہم میں سے. تو کیا تھا ہمارا نام, کیا تھا ہمارا وجود, کیا تھی ہماری شناخت, کون تھے ہم, کچھ بھی نہیں, نتھنگ, لم یکو شیئا, کچھ بھی نہیں تھا, کوئی چیز بھی نہیں تھے تم. اور یہاں پہ لم یکن ہونا تھا اصل میں, تو جیسے اکن یکن تکن ہوتا ہے, تو یکن ہونا تھا, مگر کیا یہاں پہ یکو ہوا, یکو میں نون گر گیا. اب نون کیوں گرا, یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. جیسے پہلے ہم نے حضرت مریم کی بھی جب بات پڑھی تھی تو اس میں بھی تکو تھا, اور اس طرح سے اکو, یہاں پہ یکو. نون کے گرنے کا یہ ایک یہ چیز کی سمبل ہے کہ یعنی جیسے یہ نون نہیں ہے نا, اسی طرح تم بھی کچھ نہیں تھے. نون دیکھو یہاں پہ بالکل غائب ہے, یہ بتانے کی یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے اس طرح سے, اسی طرح تم بھی کوئی چیز نہیں تھے, کچھ بھی نہیں, نتھنگ, تم نتھنگ تھے اس سے اللہ نے تمہیں بنایا. تو اب جب کہ تمہارا چورا تو ہے نا, تو کیا پھر سے نہیں تمہارے ذرات کو جمع کر کے بنا سکتا, پھر کیسے مشکل ہو سکتا ہے, کیوں تمہیں اتنا امپوسیبل لگتا ہے یہ. اور اگلے مثال کے طور پہ اگلے 10 سال میں 20 سال میں جو بچے پیدا ہونے ہیں وہ آج کیا ہیں, لم یکو شیئا, کچھ بھی نہیں, کوئی چیز بھی نہیں, کل ہوں گے اور اس کے بعد پھر ایسے ہی ہو جائے گا کہ کوئی چیز بھی نہیں. لیکن پھر بھی ان کا آج بھی سائنس کہتی ہے میٹر جو ہوتا ہے وہ کبھی यानी खत्म नहीं होता। अगर साइंटिफिकली भी देखें, वहां इनके जर्रे कहीं ना कहीं पड़े होंगे, अल्लाह ताला कुन फरमाएगा तो खड़े हो जाएंगे। वा रब्बी का, बस कसम है तेरे रब की। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने कसम किसकी खाई, अपनी जात की कसम खाई। सोचेंगे कितनी बड़ी कसम है, यानी तुम ये कहते हो ना कि नहीं खड़े हो सकते, अल्लाह ताला अपनी कसम खा के फरमा रहे हैं। और अंदाजा करें कि ये बात कितनी डेफिनेट होगी, हालांकि अल्लाह ताला तो फरमा दे ना अगर कि ऐसा होगा तो वही इतना ही काफी है, उसको कसम खाने की जरूरत नहीं है, मगर सिर्फ हमें बताने के लिए कि ये बात कितनी यकीनी है, ठीक है, ये बात कितनी ऐसे, ये ताकीद के लिए, हमें समझाने के लिए कि ये कितनी डेफिनेट बात है, ऐसा हो के रहेगा। और इस बात को यानी हम लाइटली ना लें, हाँ शायद हो जाए, शायद नहीं, अल्लाह ने कसम खा ली किस चीज की, लनहशुरन्नहुम, अलबत्ता यकीनन, यानी हम जरूर जमा करेंगे उनको, हम जरूर बजरूर जमा करेंगे इन लोगों को, यानी हर जमाने के हर हालात में रहने वाले जो भी पैदा हुआ वो दोबारा खड़ा किया जाएगा, जमा किया जाएगा, चाहे बूढ़ा है, बच्चा है, जवान है, कोई भी, सब इंसानों को जमा किया जाएगा। वशयातीन, और शयातीन को, सबको हम जमा कर लेंगे। शयातीन कौन, शयातीन में सबसे पहले तो देखें वो शयातीन जिनको हम शैतान समझते हैं, यानी जिन्नात, जिन्नात को हम जमा करेंगे जो लोगों के दिलों में वसवसे डालते थे और वो कहते थे कोई नहीं आनी क्यामत, ये ऐसे ही है लोगों की बनाई हुई बातें। और दूसरा शयातीन और कौन से हैं, वो शयातीन जो इंसानों में से होते हैं, जो इंसानों में से शयातीन है कि ये लोगों को बहकाते हैं, ये लोगों को वरगलाते हैं और ये लोगों के जहनों में बातें डालते हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इन जिन्नों को भी और इन इंसानों को भी अल्लाह ताला जमा फरमाएगा। सुम्मा, फिर अब ये जो सुम्मा है ना, ये मैंने आपको जैसे बताया कि कितना अरसा गुजर जाएगा और उसके बाद की ये बात आ रही है सुम्मा की, ये कोई जल्दी की नहीं बात है। इससे हमें ये पता चलता है कि जब अल्लाह ताला जमा करेगा जिन्नों को, इंसानों को और तमाम मखलूकात को, उस वक्त एकदम अगला वाला स्टेप नहीं आ गया, सुम्मा यानी फिर इतना लंबा अरसा गुजर गया, वो खड़े हैं खड़े हैं खड़े हैं, इसीलिए कुरान करीम में आता है ना कि वो इतना मुश्किल इंतजार का वक्त होगा कि लोग कहेंगे हम मर जाएं इससे तो बेहतर है, यानी इंसान ये चाहेगा कि वो उसको मौत आ जाए, इसलिए कि ये टाइम बहुत ही मुश्किल होगा उसके लिए गुजारना, ये इंतजार का वक्त, कहेंगे काश हम मर जाएं, काश हम मर जाएं, क्योंकि 50,000 साल का दिन और सूरज कहाँ होगा, जिसको हम कहते हैं सवा नेजे पे, तो वो अगर उतना भी लिया जाए बहुत करीब है, बहुत करीब है, और उस पे हजारों साल खड़े रहना और नंगे बदन नंगे पैर, और ऐसे ही इंतजार नहीं है, हमसे तो यहाँ पे एयरपोर्ट पे खड़े होकर नहीं इंतजार होता, किसी डॉक्टर ऑफिस चले जाए वहां पे नहीं इंतजार होता, इंतजार से बचने के लिए हम कहते हैं देर से चले जाएंगे, बस टाइम के टाइम जाओ, ज्यादा इंतजार ना करना पड़े, किसी को भी इंतजार करना पसंद नहीं होता, ये जो वेट का टाइम होता है ना ये बड़ा मुश्किल होता है, चाहे हम आम जिंदगी में ही अगर इंतजार के लिए कहीं लाइनें लंबी लगी हुई है, हम चीज छोड़ के आ जाते हैं कि नहीं इतनी लंबी लाइन है इतना इंतजार करना पड़ेगा, छोड़ो मैं बाद में ले लूंगी, क्योंकि इंतजार इंसान को नहीं पसंद। और सोचें वो इंतजार जिसमें कि आगे अब ये नहीं पता कि होने क्या वाला है हमारे साथ, वो इंतजार किस कदर मुश्किल होगा, लेकिन लोग वहां पे खड़े रहेंगे और अल्लाह ताला ने कसम खा के ये फरमाया, इतनी सख्त आयतें हैं ना, ये इतनी सख्त आयात हैं, इस वजह से सख्त है कि झंझोड़ा जा रहा है इंसान, जो देखें जितनी गहरी नींद सोया होता है ना, उतना ही जोर से अलार्म बजाया जाता है ताकि वो उठ जाए। तो ये सब अलार्म है इंसान के लिए, उसको झंझोड़ने के लिए, उसको जगाने के लिए कि होश कर लो, अभी भी ये अंजाम होने वाला है, कोई एक दो दिन नहीं खड़े रहना पड़ेगा। और हदीस में आता है, उस दिन जितनी प्यास इंसान को होगी उससे पहले कभी उतनी प्यास नहीं लगी होगी, और जितनी भूख उस दिन होगी उससे पहले कभी इतनी भूख नहीं लगी होगी, और जितनी थकान उस दिन होगी उससे ज्यादा कभी थके नहीं होंगे। दुनिया में एक दिन काम करके एक दिन खड़े रहना पड़े, कितना थक जाते हैं, कहाँ 50,000 साल के दिन। हम फिर उसके बाद क्या होगा, हजारों साल खड़े रहेंगे, हजारों साल खड़े रहेंगे, फिर लनुहज़िरन्नहुम। अब ये फिर ने क्या क़यामत ढा दी, फिर में सदियां गुजर गई, सदियां गुजर गई। एक तो मुश्किल वक्त वैसे ही नहीं जल्दी गुजरता, एक रात भी जो दर्द की होती है ना या तकलीफ की होती है, वो ऐसे लगता है सदियां गुजर गई, है ना। एक घंटा भी जो मुश्किल का होता है, जिसमें इंसान किसी तकलीफ में हो, किसी परेशानी में हो, तो ऐसे लगता है साल हा साल बीत गए पता नहीं मेरे ऊपर। और वो दिन जो बच्चों को बूढ़ा कर दे, बच्चों को बूढ़ा कर दे, कितनी तकलीफ का दिन होगा। हम थोड़े गम पे यहाँ पे कहते हैं दुनिया में, इस गम ने तो मुझे बूढ़ा कर दिया, इस गम ने तो मुझे बीमार कर दिया। वो गम कैसा होगा जब खड़े में खड़े हैं और सोच रहे हैं अब बनेगा क्या मेरा, उस वक्त जिंदगी की सारी फिल्म जो है आंखों के सामने घूम जाएगी, ये किया ये किया ये किया, बड़ा टाइम होगा, बड़ा टाइम होगा उस वक्त सोचने का। फिर क्या होगा, लफ्ज देखो सिर्फ दो हरूफ का है, सुम्मा, ती, सा और मीम, और कितने जमाने हैं इसमें। लनुहज़िरन्नहुम हौला जहन्नम जिथिया, हम जरूर हाजिर करेंगे इनको जहन्नम के आसपास घुटनों के बल। आज ये कहते ना क्यामत नहीं आनी और कुछ नहीं होता, और ये मौलवियों की बातें, ये फलानों की बातें, ये इसकी बातें, तो हम इनको फिर जहन्नम के इर्द गिर्द घुटनों के बल जमा कर लेंगे, हाजिर कर देंगे। यानी इन इंसानों को, शैतानों को, इन जिन्नों को, इन सबको जमा कर लेंगे। और कैसे जमा करेंगे, उसकी तस्वीर आपके सामने दिखाई गई है कि जहन्नुम है और उसके इर्द गिर्द कुछ इंसान है, और जिसिया की पोजीशन को अगर आप सिर्फ अपने जहन में इमेजिन करें कि घुटनों के बल कोई खड़ा है, यानी आपको बताने तशहुद वाली पोजीशन में नहीं, खड़े होना, वो तो हम बैठे होते हैं ना तशहुद की पोजीशन में जब अत्तहियात पढ़ते हैं, ये हैं घुटने और पैर सिर्फ जमीन पे, पैर की टिप्स जमीन पे लग रही हैं और आप ऊपर से खड़े हैं, ठीक है। और ये है जिसिया की पोजीशन, यानी नील डाउन होना, ठीक है। जहन्नुम के इर्द गिर्द इन लोगों को इस तरह से करा जाएगा। अरे ये पोजीशन कैसी होती है, ये जासिया की पोजीशन कैसी होती है, कि जैसे जहन में आता है जैसे कोई मुजरिम हो, कोई मुजरिम हो और उनको इस तरह से खड़ा किया जाता है इस पोजीशन में। ये पोजीशन ही इतनी खौफनाक है, अपनी आंखें बंद करके जरा जहन में लाएं कि एक आग जल रही है और उसके इर्द गिर्द लोग इस पोजीशन में हैं, उनको वहां पे लाया गया और इस वक्त बंधे हुए हैं, चेन्स में, बेड़ियों में टॉक है और हाथ पीछे बांधे हुए। सूरह हाका में अल्लाह तआला ने फरमाया ना कि किस तरह से इनको बांधा जाएगा और कैसे इनका हशर किया जाएगा। उस वक्त इंसान कहेगा वअम्मा मन उतिया किताब हो बिशिमाले, जिसके बाएं हाथ में किताब दी जाएगी, फयकुल या लैतनी लम उता किताबी, हाय काश मेरी किताब ना मुझे दी जाती, वलम अदरी मा हिसाबिया, काश मेरा हिसाब ही मुझे पता ना चलता, या लैतहा काना तिलकादिया, काश मुझे मौत आ जाती, मौत मेरा फैसला कर देती, माँ अगना अन्नी मालिया, मेरे माल ने मुझे क्या फायदा दी, हालांकि अन्नी सुल्तानिया, किधर है मेरा, मेरा इकतदार, मेरा वो कहाँ है अब, कुछ भी नहीं। खुजूहु फगुल्लूहु सुम्मल जहीम सल्लूहु, पकड़ो इसको, बांधो इसको, इसको जहन्नुम के अंदर डालो, इसको ऐसी ऐसी सिलसिला सिलसिला तिन सबाऊना दिरान फसलुकू, इसके अंदर एक ऐसी चेन के अंदर इसको पिरो दो, जो जो 70 हाथ लंबी है उस चीज में इसको सलाका कहते हैं, पिरो देना, पिरो दो इसको। क्या वो इनका हाल होगा कि बंधे होंगे, और बस लगातार कि 70 गज लंबी चेन्स के अंदर इनको बांधा होगा। तो सोचिए कि इंसान को ऐसे बांध के और फिर जहन्नुम के इर्द गिर्द खड़ा किया था। ये अल्लाह ताला ने तस्वीर कशी की है कि उस वक्त को सोचो कि वो कैसा वक्त होगा। कभी आपने दुनिया में मुजरिमों को इस तरह की तस्वीर में देखा कि ऐसे हाथ बंधे थे, सर नीचे हैं और घुटनों के बल हैं, और इस पोजीशन में भी कितना जमाना गुजर जाएगा, कितना जमाना गुजर जाएगा। इसलिए क्या आ गया है, सुम्मा, फौरन ही नहीं इनको उठा लिया जाएगा। और खुद इमेजिन करें कि कोई लोग अपने सामने जहन्नुम को देख रहे हैं, क्योंकि जहन्नुम के इर्द गिर्द है ना, अपने सामने जहन्नुम को देख रहे हैं और इस पोजीशन में, ना अभी अंदर जा रहे हैं और ना ही यानी कोई चैन है इनको, और जहन्नुम का हाल क्या हो रहा है। ऐसे नहीं कि कोई आम सी आग है, देखो ये हाजिर होना कैसा है, कि इनकी अपनी हालत कैसी है, कि घसीट के इनको यहाँ पे लाया जा रहा है और यहाँ पे छोड़ दिया गया भी, क्योंकि आगे थुम्मा है, यहाँ पे छोड़ दिया गया, कोई अभी तक नहीं, अभी यहीं पे बैठे। अल्लाह हु अकबर, वो वेट, और उस वक्त इंसान कहेगा मैं मर ही जाऊं, क्योंकि आप सोचिए, एक होती है ना कि बस ठीक है मुझे पता चल जाए, जैसे आप किसी रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं, तो बाद लोगों के टेस्ट होते हैं, कोई कैंसर का, कोई और चीजों का, तो वेट कर रहे होते हैं। अब वेट में, अब बीच में छुट्टियां आ गई, वो जो उनका इंतजार का पीरियड होता है ना, वो उनके ऊपर इतना मुश्किल होता है, इसलिए कि वो कहते हैं, फिर उसके बाद इंसान कहता है बस जो भी है बस मुझे पता चल जाए, जो भी फैसला होना हो जाए, क्योंकि अब मेरे से इंतजार नहीं होता। तो ये उनकी कैफियत सोचे कैसी होगी कि जब जहन्नुम, और जहन्नुम कोई आम आग नहीं है, वो जीती जागती चीज है जो जोर जोर से सांसें भी लेती है, इतनी जोर से उसकी सांस होती है और चिंगाड़ती भी। और शहीक और जफीर का लफ्ज बाकायदा कुरान करीम में आया है कि कैसे उसका धाड़ना, कैसे उसका आवाजें निकालना, जैसे भूखे शेर की तरह ना, जैसे घात में बैठा होता है इस तरह से। इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा, के मिरसाद कहते हैं जैसे शिकार के ऊपर किसी दरिंदे ने नजर लगाई होती है ना, कि मैं अपने शिकार को, आपने कभी देखा है ये, इसमें दिखाते हैं कि जंगलों के अंदर कैसे शेर शिकार करते हैं, तो छुप के बैठा होता है और देख रहा होता है अपने शिकार को, तो कि मैं अभी उठ के इसको पर हमला कर लूंगा, अभी मैं इसको झपट लूंगा। इस तरह जहन्नुम देख रही है कि मैं इसको खा जाऊं, इसको पकड़ लूं। अल्लाह अकबर, तो वो उसका चिंगाड़ना भी सुन रहे हैं, उसके उसका धाड़ना भी सुन रहे हैं, ऐसे जैसे भूखा दरिंदा एक कब एक जंप लगाएगी और दबोच लेगी। वो तो कहती मुझे छोड़ो कि मैं इनको खा लूं, और उसका शिकार कौन है, इंसान का शिकार इंसान है, और उसका पेट नहीं भरेगा इंसानों से, कि इंसानों के इंसान उसमें डाले जाते रहेंगे। फिर कहेगी हल में मजीद, हल में मजीद, को और हैं तो दो, और हैं तो दो। और इसकी आग कोई सुर्ख आग नहीं है, उसकी आग कोई सफेद आग नहीं है, बल्कि उसकी आग ऐसी है कि जो यानी जल जल के, जल जल के स्याह हो चुकी है, काली स्याह आग है उसकी, और उसके ऊपर वो चिंगार रही है। और इसमें इसी पोजीशन में आप पड़े रहो और इसको देखते रहो, हमसे तो यानी इसके ऊपर कोई ऐसे मनाजिर दिखाई जिसके अंदर लोगों को जिसको कहते हैं ये ग्राफिक पिक्चर्स हैं, बच्चों को ना दिखाएं, इनको ना दिखाएं, ऐसी कोई पिक्चर भी देख लेते हैं हम, कोई ऐसी सीन ही देख लेते ना सिर्फ टीवी पे, तो कितने दिन नींद नहीं आती है। ये मतलब मैंने ऐसी चीज देख ली, और एक इंसान अपने सामने देख रहा है और उसको ये पता है कि अब इसके बाद मैंने इसके अंदर चले जाना, उसका हाल क्या होगा।
ثم بر لا ننزعن من كل شيء أيهم أشد على الرحمانية. اس کے بعد یہی تک نہیں ہوگا، پھر اتنا زمانہ اس میں گزرے گا، پھر ہم الگ کریں گے ہر گروہ میں سے کون زیادہ اپنے رحمان کا، کون زیادہ رحمان کا نافرمان تھا، سرکش تھا، کون زیادہ ڈس اوبیڈینٹ تھا. اور صرف ڈس اوبیڈینٹ نہیں، ایتیا یعنی جو حدیں کراس کر چکا، جو نافرمانی میں حد سے نکل چکا. ہر گروہ میں سے ایسے لوگوں کو پھر الگ کھینچ کے کیا جائے گا، صرف الگ نہیں کیا جائے گا، نزا میں نے آپ کو کیا بتایا کیا ہوتا ہے، کھینچ کے نکال لینا. یعنی ہر گروہ میں سے کچھ لوگوں کو کھینچ کے نکالا جائے گا. اب دنیا میں ہی آپ سوچیں، کسی جگہ اگر لوگ کھڑے ہوئے ہیں، وہاں سے کچھ لوگوں کو بازو سے پکڑ کے، یا عورتیں ہیں تو ان کو بالوں سے پکڑ کے کوئی کھینچ لے، کتنی بڑی ذلت ہے، کتنی ذلت ہے نا. اس کے لیے تو یہی ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے کہ ہائے، یا کسی کو گردنوں سے پکڑ کے کھینچا جا رہا ہے، کیسا لگتا ہے، کتنی رسوائی ہے. یہ لفظ بڑا ہی سخت ہے، لننزعن، ہم کھینچ کے نکالیں گے، کھینچ رہے ہوں گے. عورتوں کو بالوں سے پکڑ کے کھینچا جا رہا ہوگا، مردوں کو جبڑوں سے پکڑ کے کھینچا جا رہا ہوگا. ایک جگہ پہ آتا ہے کہ جب ان کو گھسیٹا جا رہا ہوگا تو کہیں گے رحم رحم، ان سے کہے گا جائے گا جب رحمان نے تجھ پہ رحم نہیں کھایا تو ہم کیا رحم کھائے، فرشتے اس طرح گھسیٹ رہے ہوں گے. تو جب ہر گروہ سے کھینچ کے نکالا جائے گا، کن کو، جو رحمان کے مقابلے میں بہت سرکشیاں کیا کرتے تھے، جو باتیں نہیں مانتے تھے. اب یہ دیکھیں کہ جو اب وہ گھٹنوں کے بل جو پڑے ہوئے نا، ان میں سے جو ایکسٹریمسٹ تھے ان کو نکالا جا رہا ہے، الگ کیا جا رہا ہے. اب اسے امیجن کریں، میں تو جو خیر جو بات آپ کو بتاؤں گی وہ تو کچھ بھی مماثلت نہیں رکھتی، لیکن جسٹ آپ کو ایک اس چیز کا تھوڑا سا تصور دینے کے لیے کہ جب ہم ایئرپورٹ وغیرہ پہ اترتے ہیں، بعض دفعہ وہ کیا کرتے ہیں کہ جی آپ لوگ الگ ہو جائیں، نکال نکال کے الگ کر دیتے ہیں. اس وقت کہ جی آپ سے ایکسٹرا کوشچننگ ہوگی، آپ ایئرپورٹ پہ اترے ہیں، آپ کو الگ کر دیا گیا، ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا. وہ جو چیز ہوتی نا، وہی انسان کے لیے اتنی گھبراہٹ، اتنی انگزائٹی، اتنی اس کے لیے پریشانی کا باعث ہوتی ہے. حالانکہ کیا کر دیں گے، وہ سوال جواب ہی کریں گے نا، کوئی مارنے نہیں لگے، کوئی کچھ نہیں کرنے لگے، صرف وہ انٹروگیشن جو ہوا ہے نا، وہ ہی انسان کو اتنا پریشان کر دیتی ہے کہ مطلب اس سے یہ نہیں برداشت ہوتا کہ مجھے الگ کر کے مجھے انٹروگیٹ کیا جا رہا ہے. اب وہ جو ایک الگ جب وہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کیا انسان کی حالت ہوتی ہے، کیا اس کی پلپیٹیشن سوچیں، اس کی گھبراہٹ سوچیں کہ ارے مجھے الگ کر دیا گیا، اب کیا ہوگا. اور یہاں پہ وہ جو جہنم کے پاس اس پوزیشن میں جس یا کی پڑے نے، ان میں سے کچھ کو نکال نکال کے کھینچ کھینچ کے الگ کیا جا رہا ہے. اور جب الگ کر دیا گیا پھر بھی ایسے ابھی نہیں کچھ ہو رہا، ابھی کچھ نہیں، اور اب الگ کیا جا رہا ہے، الگ کر کے ایک جگہ کر دیا گیا، چلو الگ ہو کے یہاں پہ بیٹھو، یہاں پہ جس یا کی پوزیشن میں رہو. اور اس پہ بھی زمانہ گزرتا جا رہا ہے. اب امیجن کریں کہ اگر مر سکتے ہوتے نا تو مر جاتے کئی لوگ، کہ اب ہمارا بننے والا کیا ہے. سما، اس لیے کہ سما آ گیا کہ اب اس میں بھی اتنا عرصہ پڑے رہیں گے الگ کیے ہوئے. پھر لنحن عالم بالذین هم اولا بها صلیا، ہم زیادہ جاننے والے ان لوگوں کو جو زیادہ مستحق ہے اس میں داخل ہونے کے، ہمیں پتا ہے کہ کون ہے ان میں جو پہلے جائے گا. الگ اس لیے کیا جائے کہ گا کہ تم میں سب سے زیادہ کون مستحق ہے، کون ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ
आग में इस तरह से जैसे रोस्ट किया जाए, भूना जाए, हम ज्यादा जानते हैं। अब देखें कि उस वक्त ये दुनिया की जिंदगी कितनी पीछे रह गई होगी, कितनी पीछे, वो घर, वो वक्त, वो जॉबें, वो एक्टिविटी, वो फन, वो मसरूफियात, वो टाइम नहीं है, वो ये नहीं है, वो कितना सब कुछ पीछे रह गया और आज किस पोजीशन में पहुंच गए, किस जगह में पहुंचेंगे। और ये तो ऐसे लगेगी जैसे कभी थी ही नहीं, ये जो आज इतनी अहम है ना, ऐसे लगेगी कभी नहीं थी, वो क्या थी, कोई ख्वाब ही लगेगी कि कोई ख्वाब था। आज ये होने वाला है, रहमान के साथ तुमने नाफरमानी की, हद से गुजर गए, ताजीम की हद से, फरमाबरदारी बजाय करने के नाफरमानी की हदों को क्रॉस करके किसी हद पे तुम रुकते ही नहीं थे, बुराइयों में आगे आगे थे, आज जहन्नुम में जाने वालों में भी आगे आगे होगे। तुम पहले क्यों जाओगे, इसलिए कि तुम बुराई में भी तो, गुनाहों में भी तो पहले थे, उसमें भी तो सबसे आगे हुआ करते थे, बढ़ बढ़ के हिस्सा लेते थे। وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, और नहीं तुम में से मगर कोई ऐसा नहीं है तुम में से, इल्ला वारिदुहा, मगर सबको उसमें दाखिल होना, यानी कोई भी बचेगा नहीं। एक तो ये बात है जो पीछे से ही आ रही है कि ये जितने भी ये ऐसे कयामत के दिन को झुटलाने वाले हैं, इनमें से कोई भी नहीं बाकी बचेगा, सब के सब जहन्नुम के अंदर दाखिल होंगे, वारिद होंगे। और दूसरा मुफस्सिरीन कहते हैं कि नहीं, आगे के जब बात को पढ़ा जाए तो उससे पता चलता है कि ये सब इंसानों के लिए कहा जा रहा है कि सब के सब को उस पे वारिद होना है। अब वारिद होने का क्या माना है, इसमें भी दो बातें कही जा रही हैं। एक वारिद होने को लिया जा रहा है एंटर होना, दाखिल होना, ये सब को उसके ऊपर से दाखिल होना होगा, उसके अंदर से दाखिल होना होगा। दूसरा उसके ऊपर से गुजरना, कि उसके ऊपर से गुजरेंगे। तो इसके अंदर दोनों चीजों को ही हम देख लेते हैं कि क्या इसके बारे में उलमा ने फरमाया। तो सबसे पहली जो, जैसे मैंने आपको बताई बात कि वारिद होने के ऊपर हजरत इब्ने अब्बास जो थे, वो यहाँ पे वुरूद से मुराद दाखिल होना लेते हैं। और आपने दलाइल के अंदर बहुत सारी आयात दी कुरान की कि जिनमें वुरूद जो है ना, उससे मुराद दाखिल होना है। तो जो उन आयात से तो यही पता चलता है। अब ये है कि जैसे मिसाल के तौर पे वनासुकुल मुजरिमीना इल्ला जहन्नम विरदा और भी आयात बताएं, तो उससे उन्होंने ये लिया कि ठीक है वारिद दाखिल तो सब होंगे, मगर जो नेक होंगे वो उनके लिए ये आग ठंडी कर दी जाएगी, और जो गुनाहगार होंगे वो उसमें दाखिल होंगे और वहीं पड़े के पड़े रह जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे है कि कोई ऐसा नहीं होगा जो कि ना जाए, और सब जाएंगे, यानी कोई रह ही नहीं जाएगा इंसानों में से, चाहे कोई बुरा है, अच्छा है, गुनाहगार है, नेक है, नबी है, फासिक फाजिर है, सब जाएंगे, गुजरना सब नहीं। तो अगर हम वुरूद का माना गुजरने का लिए, तो उसको हदीस से हमें ये पता चलता है कि जहन्नुम के ऊपर एक पुल लगाया जाएगा और उस पुल से सबको गुजरना होगा। ये इब्ने मसूद की वो इस चीज के कायल है, वो फरमाते हैं कि पुल सिरात से चूंकि सबको गुजरना होगा, और यही आग के ऊपर से गुजरना है, यही आग के पास खड़े होना है, और इनमें से बाज बिजली की तरह गुजर जाएंगे, बाज हवा की तरह, बाज परिंदों की तरह, बाज तेज रफ्तार घोड़े की तरह, बाज तेज रफ्तार ऊंटों की तरह, बाज तेज चाल वाले पैदल इंसान की तरह, यहाँ तक कि सबसे आखिर में जो मुसलमान से पार होगा, ये वो होगा जिसके सिर्फ पैर के अंगूठे पे नूर होगा, वो गिरता पड़ता निजात पाएगा। और पुल सिरात फिसलनी चीज है, जिस पर बबूल जैसे और कांटे होंगे और दोनों तरफ फरिश्ते सफे बांधे होंगे जिनके हाथों में जहन्नुम के अटकस होंगे जिनसे पकड़ पकड़ के जैसे कोई हुक्स होते हैं ना जिनसे पकड़ पकड़ के लोगों को जहन्नुम में धकेल देंगे। और ये वक्त बहुत ही मुश्किल होगा, बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि जाहिर है ऐसा पुल है, इतना बारीक पुल है, नीचे आग है और ऊपर से लोगों ने गुजरना है, तो अब कितना ज्यादा चांस है कि कोई नीचे गिर जाए। तो अल्लाह की मदद ही होगी जो पहुंच सकता है। और इसी तरह काब रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि जहन्नुम अपनी पीठ पे तमाम लोगों को जमा लेगी। जब सब नेक और बद जमा हो जाएंगे तो अल्लाह का हुक्म होगा कि अपनों को तू पकड़ ले और जन्नतियों को छोड़ दे। अब जहन्नुम सब बुरे लोगों को निवाला बना लेगी और बुरे लोगों को वो अच्छी तरह जानती पहचानती होगी, जिस तरह तुम अपनी औलाद को, बल्कि इससे भी ज्यादा। और मोमिन बस बच जाएंगे। सुनो, जहन्नुम के दारुओं के कद 100 साल के रास्ते के हैं और उनमें से हर एक के पास गुर्ज हैं। एक गुर्ज मारते हैं यानी जैसे विप होता है, जैसे फोड़ा होता है, तो 7 लाख आदमियों का चूरा हो जाता है। ऐसे है जहन्नुम। तो मुत्तकी लोग उससे निजात पाएंगे और जालिम उसमें ही रह जाएंगे। इसीलिए एक और जगह पे आता है ना कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको बस कसम के तौर पे बस इसमें से वारे दोनों पड़ेगा, यानी वो जाए गुजरेंगे तो वो भी, लेकिन बस ऐसे होगा कि वो आग उनके लिए ठंडी हो जाए। तो अगर हम दूसरा माना लें तो फिर ये माना बनता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस दिन बहुत से मर्द और औरतें उस पर से फिसल पड़ेंगे, क्योंकि इसके दोनों किनारे फरिश्तों की सफबंदी होगी, अल्लाह से सलामती की दुआएं कर रहे होंगे। और ये क्या है, खाना अला रब्बी का हतम मकदिया, ये अल्लाह ताला का वो फैसला है, ये अल्लाह की वो कसम है जो पूरी हो के रहेगी। उसका फैसला हो चुका है, अल्लाह ने इसको अपने जिम्मे लाजिम कर लिया कि ये लोग सब के सब गुजरेंगे। जैसे जैसे अमल होंगे उतनी देर लगेगी हर एक, जितने अमल अच्छे होंगे उतनी तेजी से गुजर जाएंगे, जितने अमल अमल में स्लो थे तो यहां पे भी स्लो हो गए। फिर कहीं तो अंदर ही गिर जाएंगे ना, आपको पता है। और इसके ऊपर ही सोचें, एक तो गुजरना इतना मुश्किल, ऊपर से समझ लें उसके ऊपर दो पुलिस कह लें, पुलिस अपनी जुबान में हम कह लें, दो लोग खड़े होंगे, एक है अमानत और एक है सिलाए रहमी। जिसने इन दोनों में खराबी की होगी वो तो उसको लेके तो जहन्नुम में डाल दी। अल्लाह अकबर, ये आयत बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है। और इसी वजह से सोचें कि हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा के बारे में आता है, एक दफा अपनी बीवी के घुटने पे सर रख के लेटे हुए थे तो रोने लगे, तो आपकी बीवी भी रोने लगी, आपने पूछा तुम क्यों रो रही हो, उन्होंने जवाब दिया आपको रोता देख के, फरमाया मुझे तो ये आयत याद आ गई, वह इन दिन को मिल्ला वारी दुहा, तुम में से कोई ऐसा नहीं होगा कि जो इसके ऊपर से ना गुजरे, तो मुझे रोना आ गया, पता नहीं मेरी निजात होगी कि नहीं, और उस वक्त बीमार थे। इसी तरह अबू मैसरा जब रात को अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाते तो रोने लगते। जुबान से उनके बेसाहता ये निकल जाता कि काश में पैदा ही ना हुआ होता। एक बुजुर्ग ने अपने अपने भाई से फरमाया, आपको ये तो पता है कि हमें जहन्नुम में से गुजरना है, उन्होंने जवाब दिया हाँ यकीनन पता है। फिर पूछा क्या ये भी पता है कि वहां से बाहर हो जाओगे, उन्होंने फरमाया इसका तो कोई पता नहीं। तो फरमाने लगे फिर हमारे लिए खुशी कैसी, ये सुन के मौत की घड़ी तक उनके होंठों पे हंसी नहीं आई कि पता नहीं हम पार हो पाएंगे कि नहीं, पता नहीं अगर वरूद का मतलब ये लिया जाए जहन्नुम के अंदर दाखला होगा तो पता नहीं हमारे लिए जहन्नुम ठंडी होगी कि नहीं।
जहन्नुम का मुंह जो हदीस में आता है तंदूर की तरह, यानी ऊपर से तंग और नीचे से खुला। अल्लाह अकबर। और जो गुनाहगार होंगे तो जब वो गिरेंगे तो जैसे उसका ढक्कन बंद कर दिया जाएगा। हज़रत मुआज़ की जब वफात का वक्त आया, बड़ा रो रहे थे, तो उनसे पूछा कि आपको क्यों रोते हैं आप? फरमाया, खुदा की कसम, ना मुझे मौत की घबराहट है, ना दुनिया के जाने का कोई गम है, लेकिन मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि दो मुट्ठियां हैं, एक मुट्ठी जहन्नुम में जाएगी और दूसरी जन्नत। पता नहीं मैं किस मुट्ठी में हूंगा। जब मैं ये आयते आपके लिए तैयार कर रही थी तो यकीन करें मेरे मुंह से भी यही निकला, अल्लाह काश मैं पैदा ना हुई होती। बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है आगे के जो मराए ना जन्नत तक तो पहुंचना। या अल्लाह जब है तो तेरी रहमत से अगर पहुंच गए, लेकिन उससे पहले के मरहले बड़े मुश्किल है। तूने हमें क्यों पैदा कर दिया? मैं सोच रही थी कि निकाह हमारा तो क्या क्या ईमान है, क्या जिनके ईमान इतने मजबूत थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में रहा करते थे सहाबाए कराम, क्यों नहीं फिर वो कहेंगे ये बात कि काश मैं पैदा ना हुआ होता। अबू ज़र गफ़ारी जो है वो इस बारे में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खुतबा सुना तो फिर ख्वाहिश करने लगे काश मैं दरख्त होता, उसको काट दिया जाता। क्यों अबू हुरैरा जो बोलते हैं कि सफर बड़ा लंबा है और ज्यादा रहा बहुत थोड़ा है मेरे पास, इस वजह से मैं रोता हूं। मौत का उनका वक्त करीब था। अबू हुरैरा है जिनसे सबसे ज्यादा तादाद अहादीस की जिन्होंने रिवायत की, वो ये फरमा रहे हैं कि सफर इतना लंबा है और मेरे पास सामान कुछ भी नहीं, मैंने ऐसे टीले पे शाम किया जिससे आगे जन्नत है या जहन्नम है, मुझे नहीं पता मेरी मंजिल कौन सी होगी। फिर वो क्यों ना ऐसा कहते होंगे? बड़े मरहले हैं बहुत, और ये मरहला इतना सख्त है, इतना मुश्किल है, क्योंकि हर एक को जहन्नुम को देखना है। और वो आप सोचते होंगे कि नेक लोग क्यों देखेंगे, नेक लोगों को क्या, जिन्होंने जन्नत में जाना है वो क्यों देखे? इसलिए उनको दिखाई जाएगी कि जब वो जन्नत में जाएं तो उनको ये याद रहे कि अल्लाह ताला ने उनके ऊपर कितना करम किया और उनको किस बला से बचा लिया। यही वो चीज है कि दुनिया में बड़ी 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 सल्तनतें, हुकूमतें, माल दौलत और हर तरह की आसाइशें रखने वाला भी एक गोता सिर्फ जहन्नुम में खाएगा, एक गोता, और दुनिया की हर आराम और हर आसाइश को भूल जाएगी, सिर्फ एक गोता, जस्ट एक डिप दिया जाएगा उसको। इतनी जल्दी ये दुनिया भूल जाएगी और इतनी जल्दी इसके ऐश और आराम इतनी जल्दी भूल जाने वाले, और हम इनके लिए कितना मर रहे हैं, किस तरह इनके पीछे हम अपने आप को पागल किए हैं, और छोटी छोटी ख्वाहिशें और छोटे छोटे गम हमने ऐसे लगाए हुए कि जैसे बस सब यही है। कुरान पढ़ने का फायदा ही है, सबसे बड़ा ये एक फायदा होता है कि इंसान को अपनी आखिरत की फिक्र बहुत ज्यादा लग जाती है, और जब आखिरत की फिक्र शदीद जितनी ज्यादा शदीद होती जाएगी ना उतने ही दुनिया के गम हल्के होते जाते हैं। ये नहीं है कि दुनिया के कोई गम नहीं है, गम तो फिर भी होंगे, परेशानियां तो फिर भी होंगी, फिक्रें तो फिर भी होंगी, लेकिन हल्की हो जाएंगी इसलिए कि उससे बड़ी चीज की फिक्र लग गई होगी। तो ये हमें फिक्र आखरत देता है, और ये अल्लाह ताला का फैसला है। جو کہ ہو کے رہنے والا یعنی ہو چکا فیصلہ, اٹس ڈن, یہ تو لازمی بات ہے, یہ لازم ہوگا. اللہ اکبر, ثم پھر ننجی, پھر ہم بچا لیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر انسان کتنی فکر کرتا ہے کہ اللہ ہمارا کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ فورت ان لوگوں کو جو اللہ سے ڈر کے رہنے والے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم ننجی الذین اتقوا, پھر ہم ان کو نجات دیں گے جنہوں نے تقوی اختیار کیا, جو دنیا میں بچ بچ کے چلے, جو دنیا میں ڈر ڈر کے چلے, جو دنیا میں کوشسلی چلے, جو دنیا میں ہر وقت یہ سوچتے تھے, ہر بات کرنے سے پہلے سوچتے تھے, اتنا ہی اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے. تو دیکھو جب انسان یہ ساری چیزیں سنتا ہے نا, سوچتا ہے, اور یہ سارے مناظر اتنے ایکسٹریم یہ مناظر امیجن کرتا ہے, تو اس کے بعد اتنی زیادہ جو بے چینی اور فکر ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اس سے بچنے کا بس ایک ہی راستہ ہے, تقویٰ, یعنی اویئرنیس کے ساتھ زندگی گزارو, کانشیسنیس کے ساتھ گزارو. بالکل تم اس چیز کو اپنے ذہن سے ہٹا کے اور ایک منمانی زندگی اور مدہوشی کی زندگی نہ جیو. اس انجام کو سامنے رکھ کے پھر سوچو کہ کیسی زندگی ہونی چاہیے. اگر تم اس انجام کو پہنچنا نہیں چاہتے تو ہر دن ایسا ہو کہ جو کام کرنے لگو اس سوچ کے ساتھ کرو کہ اللہ میری اس بات سے اس وقت خوش ہو رہا ہوگا یا نہیں, میرے اس کام سے اس وقت خوش ہو رہا ہوگا یا نہیں. اور انسان ساری زندگی کوشش میں لگا رہے کوئی مطمئن نہ ہو. دیکھیں حضرت عمر عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, اور حال یہ ہے کہ چہرے پہ دو سیاہ لکیریں رونے کی وجہ سے پڑ گئی تھی, اپنی چادر ڈال کے روتے تھے, چہرے کے بال گر پڑتے تھے اور اپنے گھر میں پڑے رہتے تھے ایسے جیسے کہ بیمار ہوں میں. واقعی انسان ایسے فیلنگ آ جاتی ہے کہ میں بس بیمار ہو گیا ہوں, اندر سے فیل ہوتا ہے. لوگ عیادت کرنے آتے تھے, کتنے بیمار ہو گئے, کیا ہو گیا ان کو, وہ کوئی بیماری نہیں ہوتی تھی, وہ یہی چیز ان کو ایسا کر دیتی تھی کہ بستر پہ پڑ جاتے تھے. کیسے حضرت عائشہ روتی ہیں, کیسے حالانکہ پیاری بیوی ہیں, سب سے پیاری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی, لوگوں میں سب سے زیادہ پیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے تھا, جہاں تم کو یاد کرتی رو پڑتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں روتی ہوں, کہتی میں جہنم کو یاد کر کے رو رہی ہوں. کیا آپ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ فرمایا ہاں, لیکن تین مقامات پہ تو کوئی کسی کو نہیں یاد رکھے گا, ان میں ایک ہے یہ کل صراط, یہاں پہ کوئی کسی کو نہیں یاد رکھے. ہر ایک کو اپنی اپنی پڑیوں کی نفسہ نفسی, پڑیوں کی نفسہ نفسی دنیا میں پڑ جاتی ہے. اگر کسی کے اوپر کوئی مصیبت آئے دنیا میں نفسہ نفسی پڑ جاتی ہے, ہر کوئی کہتا ہے ہم اپنی اپنی کریں. قیامت کے دن کی نفسہ نفسی کیا ہوگی جب ہر کسی کا کوئی پرسان حال نہیں. ایک سب صحابی تھے اور قرآن پڑھ رہے تھے, آیت آئی جب فائدن شقت السماء فکانت وردتن کدیحان, تو جیسے جسم کے سارے بال کھڑے ہو گئے, روتے روتے حال یہ ہو گیا دم گھٹنے لگا, اور کہتے جائیں ہاں جس دن آسمان پھٹ جائے گا میرا کیا حال ہوگا, ہاں جس دن آسمان پھٹ جائے گا میرا کیا حال ہوگا, ہائے میں برباد ہو گیا میرا کیا حال ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اس رونے کی وجہ سے فرشتے بھی رونے لگے. ہم تو کبھی سوچتے ہی نہیں نا کہ کوئی مرد بھی کبھی رو سکتا ہے, وہ یہ تو ایک کمزوری کی بات ہے, یہ تو ایک اس کی بات ہے. دیکھو صحابہ کیسے روتے تھے, دیکھو حضرت عمر کیسے روتے تھے کہ نماز پڑھا رہے ہوتے تھے, अगली इमामत करा रहे हैं और पीछे तक आवाज आ रही, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे रोया करते थे कि हांडी की जैसे वो बल्ले की आवाज होती, इस तरह आवाज आया करती थी। फिक्रें कुछ और थी, हमारी फिक्रें कुछ और है। अल्लाह तआला फरमाते हैं हम निजात दे देंगे उस दिन तक पाक वालों को, अल्लाह हमें इनमें शामिल फरमा देना जिनको तू निजात अता फरमाए, और एक झोंका भी आग का अल्लाह हमें ना एक लम्हे के लिए भी हमें आग ना छूने पाए, अल्लाह हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, ना दुनिया की तकलीफ बर्दाश्त कर सकते ना आखरत की। और हम छोड़ देंगे जालिमों को इसमें घुटनों के बल, यानी जो जालिम लोग होंगे वो ऐसे ही पड़े रहेंगे, यानी जहन्नम में इसी तरह बंधे हुए गिरे होंगे, अल्लाह उनको भुला देगा जैसे उन्होंने दुनिया में अल्लाह को भुला दिया था। अब किसको इल्जाम देंगे वो, किसको मलामत करें, किसको बुरा भला कहें, अपने आप को ही कहेंगे। अंजाम को पहुंच गए इस जिंदगी में, क्या करके आए कि यहां तक पहुंच गए, उस दिन इंसान किसी को नहीं कह सकेगा। इसीलिए तो अपने आप में इतना पछताएगा कि वो पछतावे का ये गम जो है ना वो उसको खा जाएगा। कहते हैं ना इस गम ने मुझे अंदर ही अंदर खा लिया, सोचो उनका गम कितना बड़ा होगा कि अब हम यहाँ से यहाँ पढ़े ने और छोड़ दिए गए, कट कट के जहन्नुम में गिर रहे हैं, कट कट के गिर रहे हैं। और जालिम कौन है सबसे बड़ा, तो अब पता है जालिम जिसने शिर्क किया, लेकिन जालिम वो भी जालिम है जो अल्लाह की नाफरमानी करता है, वो भी जुल्म है। तो जकड़े हुए हैं और एक के बाद एक गिर रहे हैं, सिरात पे से गिर रहे हैं, और इसमें भी सुम्मा है। आप ये देखिए इमेजिन करें इसमें भी सुम्मा है, इसलिए कि इसमें भी इतना वक्त लगेगा। अल्लाह तो हमारे लिए उससे आसानियां फरमा देना, क्योंकि इसमें भी इतना वक्त लगेगा। ये जो इस सुम्मा है ना, ये ना इंसान को बेचैन कर देता है, इसलिए कि इंसान दुनिया के इन छोटी छोटी चीजें जो होती ना मसले, इंसान कहता है जल्दी ये वक्त गुजर जाए, जल्दी ये परेशानी गुजर जाए, जल्दी। वो सोचो कि जो वक्त गुजर ही नहीं रहा और इतना सा गुजर गया, अभी लोग गुजर रहे हैं, आखिर इतनी मखलूक ने गुजरना है, अभी लोग गुजरते जा रहे हैं, जो तो पार हो गए वो तो सलामती पे पहुंच गए, लेकिन कौन जल्दी पार होगा, जिसके पास नूर ज्यादा होगा वो जल्दी जल्दी पार हो रहे हैं, वो हवा के झोंकों की तरह पार हो रहे हैं, वो तेजी से पार हो रहे हैं। और बाकी जिनके पास नूर कम है उनका हाल क्या है, वो थोड़ी बिजलियों की तरह भाग जाएंगे, वो थोड़ी परिंदों की तरह उड़ के चले जाएंगे, वो तो कैसे कैसे गिरते पड़ते पहुंच रहे होंगे। तो कितना टाइम लगेगा इसमें, और कोई ये नहीं कह सकेगा मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं दूसरी तरफ जाना। जैसे होता है ना कि किसी को कहीं लेके जाना हो, कोई खतरनाक हो, तो कुछ लोग अड़ जाते हैं, कहते हमने नहीं जाना, अब उनको पकड़ के आप खींचते जाएंगे, चलो चलो चलो, कुछ नहीं होता, कहते नहीं हमने नहीं जाना, हमें डर लगता है, झूले पे है या किसी उस पे है, देखा ना हमें कोई कश्ती है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को इन चीजों, वो कहते हमने नहीं जाना, वहां पे अड़के खड़े हो जाएंगे, ऐसे नहीं वहां पे कर सकते, सबको जाना है, सबको जाना है। अल्लाह सदियां ही इसमें भी गुजर जाएंगी, ये मरहला खत्म होने को नहीं आ रहा होगा, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। हाँ अंबिया वगैरह सबसे पहले पार होके दूसरी तरफ चले गए होंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से दुआएं मांग रहे होंगे कि अल्लाह मेरी उम्मत को खैरियत से पार कर दे। وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا, जब हमारी आयात तिलावत की जाती है ना, जो बिल्कुल वाज़े आयते हैं, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कितनी क्लियर आयते हैं ना, अब जब आप देखें इन आयतों को कोई पढ़े कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर, कोई ऐसी बात है जो समझ नहीं आ रही, बड़ी मुश्किल है, नहीं, इतनी सिंपल इतनी क्लियर आयते हैं जब इनके ऊपर पढ़ी जाती है ना, तो काफिर कहते हैं इनका इनका ये क्या बात करते हैं, क्या कमेंट देते हैं ईमान वालों को। अय्युल फरीकैन खैरुन मकामा व अहसनु नदिया, कौन सा दो ग्रोह में से बेहतर है। असल में दो ग्रोह किसको कह रहे हैं, एक अपने आप को और एक ईमान वालों को, कि हम दोनों में से कौन सा बेहतर है। इसमें मकाम के एतबार से यानी स्टेटस के एतबार से, स्टैंडिंग के एतबार से कौन सा बेहतर है, और किसकी कंपनी, किसकी गैदरिंग, किसकी किसका नादी, किसकी जो जो क्लब है या जो गैदरिंग है या जो जो सोहबत है या जो कॉन्टेक्स्ट है, किसके ज्यादा बेहतर है। जब ये काफिर सुना करते थे इन आयतों को, जिसमें कहा जाता था कि हाँ ऐसे ईमान वालों को ये होगा मिलेगा और जो इसको झुटलाएंगे उनके लिए ये होगा, तो अब आयात सुन के ना खुद ही खुद कंक्लूजन निकाल लेते थे कि तुम कहते हो कि ये आयते हैं ये है कि तुम बड़े अच्छे अंजाम को पहुंचोगे और तुम्हारे लिए जन्नत होगी और तुम्हारे लिए ये होगा। अगर तुम्हें इतना ही कुछ मिलना होता ना तो यहां ना मिल जाता, यहां मिल जाता फिर तुम्हें, यहां नहीं तुम्हें मिला तो वहां कौन देगा। अब देखो वो किससे बात कर रहे हैं, जो गरीब लोग हैं, जो गुलाम लोग हैं, ईमान ले आए हैं और ये बड़े बड़े सरदार हैं, तो दुनिया में उनके पोशाकें और उनकी सवारियां और उनके स्टेटस और वो कितना बड़ा था, लोग रोब में आ जाते थे, इतने बड़े बड़े सरदार थे। और दूसरा है जो बेचारा बिल्कुल ही यानी उनका नौकर किस हालत में है, दुनिया में भी कोई ऐसी शानो शौकत नहीं है, कोई ऐसे कॉन्टेक्ट नहीं है, कोई ऐसा स्टेटस नहीं है कि बड़े सोसाइटी के अंदर लोग उनको सलाम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। तो कहते थे यहाँ पे नहीं तुम्हें कुछ मिला तो वहां पे क्या मिलेगा। आज भी दिमाग में यही होता है ना कि ये जो गरीब लोग हैं पता नहीं इन्होंने ऐसे ही गरीब रहना, वहां पे भी जाके मेरे नौकर ऐसे कैसे हो सकती कि मेरी नौकर मेरे से ऊपर जन्नत में मकाम में हो और मैं उसको कुछ पूछ रही हूँ या कुछ कह रही हूँ। ये तो आज भी हमारे अंडर है, तो पता नहीं हमारे अंडर ही रहेंगे हमेशा। हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि वो जो हमारे से बिल्कुल दुनिया में स्टेटस के मामले में हमसे कुछ उस पे, जो दुनिया के ही बनाए हुए स्टेटसेस हैं, अल्लाह के हाथ से तो नहीं है मगर दुनिया में माल में कम है या खानदान में कम है या इज्जत और मर्तबे में दुनियावी लिहाज से कम है, वो कभी ऊपर जा सकता है। वो कहते थे कि तुम क्या सोचते हो, तो तुम ऐसे हो वहां पे तुम्हें बड़े कुछ मिलेगा। जैसे हम यहाँ पे है ना वैसे ही हमारा वहां पे भी स्टेटस भी होगा, सोशल सर्कल भी हमारा ऐसे होगा, मिलने जुलने वाले लोग भी, क्योंकि इंसान ना अपने मिलने जुलने वालों पे भी बड़ा फखर करता है। हाँ जी मेरे तो वो जी वो गवर्नर मेरे रिश्तेदार है और फलां वजीर हमारे तो बड़े पुराने जानने वाले हैं और मैं जी वो डॉक्टरों के सर्कल में मिलती जुलती हूँ, मेरे तो बड़े जानने वाले हैं वो डॉक्टर, मेरे तो फलाने। इंसान अपने कॉन्टेक्ट से दुनिया में इतना फखर करता है। और वो ये समझते थे जैसे यहाँ पे उनके स्टेटसेस थे और जो उनके सोशल सर्कल्स थे, सोचते थे इसी तरह वहां पे भी हमें बड़े जबरदस्त सोशल सर्कल मिलेंगे, अगर यहाँ पे हमें इतने अच्छे मिल गए वहां पे क्यों नहीं मिलेंगे। तो अल्लाह ताला ने इसका जवाब तो आगे दिया मगर हमें भी एक चीज समझा दी, हम ये जो दुनिया के अंदर आज अपने स्टेटस को स्टेटस सिंबल एक ये भी बन चुका ना कि मेरे कॉन्टेक्स्ट किसके कॉन्टेक्स्ट कितने बड़े हैं, कौन कितने बड़े बड़े लोगों को जानता है। सदियों पहले भी इंसान की यही साइकी थी है? हम अपने आप को अल्लाह वाले कहते हैं ना, लेकिन आज हमारे दिमाग भी यही है कि मुकाबले बाजियां किसमें हैं, किसके जानने वाले कितने अमीर लोग हैं, किसके जानने वाले ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, किसके जानने वाले ज्यादा बड़े बड़े लोग जिनको कहते हैं बड़े लोग, किसके जानने वाले बड़े लोग हैं। ये तो उनका हाल था, वो हमारे दिमाग को हमसे आज बदले। अल्लाह ताला ने फरमाया अच्छा तुम ये कहते हो, अल्लाहु अकबर व कम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्निन हुम अहसनु असासन व रिया। ओ ये तो क्या है तुम्हारी कंपनियां और ये तुम्हारे जो तुम बड़े बने फिरते हो इन चीजों पे, ऐसे तो बहुत सारे हमने हलाक कर दिए, बहुत सारे बड़े जो अच्छे अच्छे थे, घरों के सामान, उनके तायुशात, उनके उनके यानी मनाजिर का मतलब देखने की चीजें, बड़ी बड़ी ऐसी अल्लाह ने शानो शौकत वाली बस्तियां तबाह करके रख दी। तुम इसके ऊपर फखर करने लगे हुए, तो इसके ऊपर सोचते हैं कि हमारी कंपनियां बहुत बड़ी बड़ी हैं। तुम ये सोचिए, ये दो ग्रोह दिखाए गए ना, एक के पास माल है, दार है, दुनिया का सरमाया है, बड़ी ऊपर तक उनकी रीच है, उनकी मजलिसें शानदार हैं, उनके कपड़े शानदार हैं, उनके स्टैंडर्ड हाई हैं। इसी पे इंसानों को परखा जाता है ना, इक्तदार उनके पास है, उनकी से है सोसाइटी में, तो माल की बुनियाद पे चूंकि लोगों को तोला जाता है। अल्लाह के हाँ माल की बुनियाद पे नहीं तोला जाएगा, तुम्हारे स्टेटसेस नहीं देखे जाएंगे, तुम्हारे कॉन्टेक्ट नहीं देखे जाएंगे। ईमान है बड़ी चीज, जो कि इनके पास नहीं था, इन काफिरों के पास, वो दौलत उनके पास थी जो गरीब थे। तो वो ये कुरान की आयतें सुन के कहते थे, ये क्या बात हुई, तुम क्या सोचते हो कि हम हमारे से तुम ऊपर चले जाओगे, क्योंकि उनका क्राइटेरिया ही डिफरेंट था ना। अल्लाह ताला ने बता दिया जो तुम्हारे दिमाग में हक और बातिल, खैर और शर, और जो तुम्हारे दिमाग में स्टैंडर्ड है, वो ये स्टैंडर्ड अल्लाह के हाँ नहीं है, ये तुम्हारे जहनों में होंगे, ये अल्लाह के हाँ कुछ और स्टैंडर्ड है जिनसे लोगों को परखा जाएगा। इस किस्म की चीजों से अल्लाह थोड़ी मुतासिर होता है कि किसके पास माल कितना ज्यादा है, ये गलतफहमी तो तुम्हारी है। देखो हमने तो कितनी ऐसी बर्बाद कर दी बस्तियां, बड़ी बड़ी जिनकी मजलिस थी, बड़े बड़े जिनके खाने थे, बड़ा माल जमाल साजो सामान, दुनियावी अट्रैक्शन है ना, असासा कितना किसके पास है, घर है, गाड़ियां हैं, ये सारे असासा होते हैं। ये असासा जिसका बहुत अच्छा था, आसन था, और इतना ही दुनिया के अंदर इसी कंपटीशन में लगे रहे कि जो है ना मेरा असासा ज्यादा हो, मेरा असासा ज्यादा, देखते नहीं किस तरह के खंडर बन गए वो। कहाँ है वो ऐसे लिबास पहनने वाले कि उनके लिबास भी हजारों लाखों के होते थे, उनके जूते, उनके कहाँ कहाँ से उनके जेवरात और वो बन के आते थे, और घरों के साजो सामान उनके कैसे थे, उनके पंखे जलने के लिए पीछे नौकर खड़े होते थे जो उनके पंखे जलते थे, और दुनिया में उनकी धाक थी उनके नाम की, उसके बाद कहाँ गए वो, आज कहाँ है वो। अगर अभी कभी आपको मौका मिले जब आप अपने मुल्क में जाएं, तो वहां पे जाके कभी देखा करें इस तरह के शाहजहां का मकबरा है, और जहांगीर और फलां, और ये मुगल बादशाहों के वीरानी की तस्वीर है, लोग बैठ के ताश खेल रहे हैं, कोई ड्रग्स कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, ये वो लोग थे जो इतने बड़े बड़े बादशाह हुआ करते थे, इनके आने पे हटो बच्चों के शोर और फला और आली जा और ये, और इनके आगे झुक झुक के सलाम होते थे। कहां गए आज ये, अल्लाह ताला ने कहा बड़ी बड़ी शानो शौकत वाली बस्तियां अल्लाह ने तबाह कर दी, तुम क्या चीज हो। हम अपने आप को भी देखें, हम आज सोचते हैं ना कि हम 21st सेंचुरी में पैदा हो गए तो हमसे ज्यादा तो पता नहीं शानो, ऐसी थोड़ी चीजें उनके पास नहीं, हमारे ज्यादा तो कोई है ही नहीं। वो तो पता नहीं बेचारे किस तरह घोड़ों के ऊपर और कच्चे मिट्टी के घरों के अंदर रहते थे, और क्या आप ताजमहल देख लें, आज वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से है, ठीक है, वैसा बना नहीं दोबारा, तो आप ये ना सोचेंगे जो पिछले लोग थे उनको तो कुछ आता ही नहीं था, हमें ही सबसे ज्यादा आता है। नहीं, अल्लाह ने कैसे वीरानी की तस्वीरें बना दी, कहाँ गए वो लोग, उनके घरों के सामान के तबार से, और जो जो सीन्स थे, जो देखने की चीजें थी, यानी जो मनाजिर थे वो इतने जबरदस्त थे, वो इनसे भी ज्यादा अच्छे थे, और फिर वो किधर चले गए, तुमने कभी नहीं ये सोचा। तबाह हो गई वो बस्तियां जिनकी सजावटें घरों की कैसी थी, असासों पे खास तौर पे कहा क्यों गया, इसलिए कि इंसान ये अपनी जो जैसे असासे में ना सब चीजें आ जाती हैं, मैंने जैसे आपको बताया आपके घर हो गए, आपकी गाड़ियां हो गई, आपके घरों की जो डेकोरेशन है वो हो गई, आपके कपड़े हो गए, जूते हो गए, मटेरियल चीजें जो भी आपके पास है ना वो सब हो गई, तो खूबसूरत सजावट की चीजें जो सारी हैं वो हो गई, आसन थे उनके, उनके ज्यादा अच्छे थे,
रिया यानी देखने की चीजें, वो वाकई यूनिक थी, इतनी यूनिक थी, देखने के काबिल थी। अभी नहीं सोचते, और सोचो कि आज हम कैसे, यानी जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है, वो तो और ज्यादा ये चीजें उसके अंदर होती जाती है कि बस भाई मेरी चीज ना कोई ले ले, उनको तालों में लगा लगा के रखेंगे, कोई खा ना ले, कोई पी ना ले, कोई पहन ना ले, कोई आए मेरी चीज ना इस्तेमाल हो जाए, सेव कर करके रखती है, वो कब्र में पैर होते हैं, और इंसान बस वो अपनी बिलोंगिंग्स के साथ चिमटा होता है, और औरतों की खास तौर पे ही ज्यादा कमजोरी होती है, बस ये माँ हमारी चीजें हैं, और हर चीज के अंदर ऐसे उसको सीने से लगाया हुआ, और इसके पीछे अपना वक्त लगा रहे हैं, अपनी ताकतें लगा रहे हैं, अपनी कि बस हाँ डेकोरेशन ऐसी हो जाए और ऐसे हो जाए, और ये मटेरियल जो एसेट्स हैं उनके पीछे कितनी भाग दौड़ लग रही है, कितनी एनर्जी लग रही है, कितना कीमती वक्त जा रहा है, वो फिर उसको सफाई कर रहे हैं, उसकी सुथराई कर रहे हैं, उसकी ये कर रहे हैं, और उसके बाद क्या है, जिन घरों के अंदर आज हम रह रहे हैं, आप क्या सोचते हैं, इनके अंदर पहले कोई और भी रहता था जो इसी तरह करता था, आज वो कहाँ है, 100 साल पहले कोई यहाँ पे इन्हीं घरों के अंदर रहता होगा, इसी जगह पे, चलो इन्हीं घर नहीं होंगे तो इन जगहों में रहता होगा, कभी जाके जरूर देखना चाहिए खंडरात को, ये विजिट करना चाहिए, ये सिर्फ कुरान में पढ़ने की बात नहीं है, गो एंड सी, अपनी आंखों से देखें खंडरात को, देखें और सोचिए कि ये तबाह हाल बस्तियां हमेशा ऐसे थोड़ी थी, ये और कई दफा वो दिखाते हैं बड़ा जबरदस्त, ये जब अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि जैसे कोई टाइटैनिक दिखाएंगे या कोई ऐसी चीजें दिखाएंगे, तो पहले तबाह हाल चीज दिखाते हैं, फिर उसके बाद उसको ऐसे उसकी फॉर्मेशन करते हैं कि जैसे लोग वहां पे घूम रहे हैं और हर चीज अच्छी है, फिर तबाह हाल दिखाते हैं, तो वो एक ही नजर में इंसान को वही चीज नजर आती है कि पहले कितनी खूबसूरत थी, और उसके बाद देखो कैसे वीरानी आ गई, किसी को एक चीख ने हलाक कर दिया, किसी को पत्थरों ने हलाक कर दिया, किसी को डबो के अल्लाह ने खत्म कर दिया, किसी के पकड़ अल्लाह ने वैसे करी, और कोई किसी को दुनिया से वैसे ही उठा लिया, वो भी बड़े मगन हुआ करते थे, उनकी भी बड़ी ख्वाहिशें थी, वो भी यहाँ पे हमेशा रहना चाहते थे, उन्होंने भी चिमटा चिमटा के रखा चीजों को, हमारी जायदादें, हमारे मकान, हमारे ये, वो भी इसके पीछे लड़ते थे, उन्होंने भी जंगें की इन्हीं चीजों के पीछे, जमीनों के पीछे और हुकूमतों के पीछे, किधर चले गए, किधर ले गए वो, अल्लाह हू अकबर, सिर्फ एक ये बात ही इंसान समझ जाए ना, तो फिर इंसान है बिल्कुल इस दुनिया की चीजों से ना ऊपर उठ जाता है, जो आज हमने चिमटाई हुई ना सीनों से लगाई हुई है, घरों में लड़ाइयां हो रही हैं, घरों में फसाद है, क्योंकि दूसरे को हक नहीं देना चाहते, हर एक ने बस छीन खसूट के बस लूट खसूट शुरू की हुई, उधर से छीन लू, उधर से छीन लू, उसका हक मार लू, उसका कर लू, मैंने देना नहीं किसी को, बुखल है दिलों में भरे हुए, इस वजह से है कि इनको लगता है शायद हमेशा यही रहना है, और हमेशा मैंने इन चीजों को सीने से लगाए रखना है, जिस दिन तुम चले गए तो तुम्हारे हाथ खाली होंगे, क्या चीज कब्र में लेके जाओगे, हमारा तो हाल ही है कि नमाज में भी वो इन्हीं चीजों के ख्याल आ रहे होते, वो फलानी चीजें जहां पे बिक रही है उसकी वो जाके ले आऊं, यहां पे कर लूं, हम तो पूजते हैं इन चीजों को, चीजें चीजें असास से ही तो हर चीज बन गई है हमारे लिए, क्योंकि वो आखरत से बेफिक्र और बिल्कुल गाफिल, जब भी इन्हीं की खिदमत में लगे हुए, और कहते हैं उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं, जिसकी जिंदगी ऐसी हो कि उसकी नजर आखरत पे हो, फिर उसके पास किधर टाइम है चिमटाने का इन्हीं चीजों को अपने साथ और इन्हीं में लगे रहने का, अल्लाह हू अकबर, सामा 100 बरस का है, पल की खबर नहीं, हो या ना 100 बरस की प्लानिंग है, और एक एक सेकंड की भी खबर नहीं है, कुल कह दीजिए, मन काना फिर दलालती, जो है गुमराही में, फल यमदुद लहु रहमानु मद्दा, तो रहमान जरूर ढील देता है उसको, खूब ढील देना, जो गुमराही में है, जो लॉस्ट है बिल्कुल, फिर फी दलाला, फी में मैंने आपको पहले फी गफलत में भी फी बताया था ना कि आप अपने जहन में इमेजिन करें, एक होता है इन और एक है इनसाइड, इंग्लिश में भी दो चीजें हैं ना, पर इनसाइड आप कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि चारों तरफ से किसी चीज ने उसको सराउंड किया, पर वो अंदर है उसके, ये भी गुमराही के अंदर जा चुके हैं, सीधे रास्ते से उतर के दूसरे रास्तों पे निकल चुके हैं, रास्ता ही भूल गए हैं। तो अब क्या रहमान की तरफ से क्या होता है, उसको ढील देता जाता है, ढील देता जाता है, और वो ढील किस लिए दे रहा है कि कभी ये बंदा वापस आ जाए, उसको मोहलत देता है, उसको चांस देता है, अल्लाह ताला चांस दिए जाता है, लेकिन इंसान जब वो ढील उसको मिलती है ना तो वो सोचता है मैं तो बिल्कुल पता नहीं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। आप देख लेना, एक औरत अगर अपने घर में जुल्म कर रही है, ज्यादतियां कर रही है, किसी साथ बुराई कर रही है, और कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, बड़े मजे आ रहे हैं, बड़े अच्छा चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, तो वो यही सोचती रही कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ किसी वक्त फिर एकदम उसके टेस्ट रिजल्ट खराब आ जाएंगे, तो फिर कहेंगे हाय पता नहीं मेरे से कुछ गलती तो नहीं हो गई। यानी जब इंसान को धचका लगता है तब वो सोचता है हाय मेरे से कोई गलती तो नहीं, जब एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ तो इंसान सोचता है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मद 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 अल्लाह ताला ऐसे समझ ले, ऐसे जैसे ना कोई जानवर है तो उसकी आप रस्सी खुली छोड़ते जाते हैं, या आप डोर है आपके हाथ में तो आप पतंग को ढील देते जाते हैं, वो है मद्दा, ढील देता जा रहा है अल्लाह उसको, खूब ढील दे रहा है, लेकिन ढील हमेशा के लिए नहीं होती कभी भी। फिर एक दिन वो रस्सी खींच लेता है, जब वो रस्सी खींचता है ना फिर वो मौका नहीं देता दोबारा। तो रहमान का तरीका क्या बताया गया कि ये जो वो ढील दे रहा है गुमराह गुमराही में, हालांकि कोई, अब आप समझते हैं कि ठीक ही होगा ये, जब भी इन लोगों को इतना कुछ मिला हुआ है, देखो कितने ऐश कर रहे हैं ये, तो आप ये नहीं तब सोचते कि इसको ढील मिली हुई। जब भी आप देखो ना कि कोई इंसान इंतहाई गुमराही में डूबा हुआ है और वो बहुत ऐशो इशरत और इसके अंदर है और उसको कुछ भी हर्ट नहीं हो रहा और वो हर चीज उसकी बड़ी अच्छी चल रही, तो समझ जाओ कि रब की तरफ से ढील है। क्योंकि वो क्यों, देखिए यहाँ पे सुभान अल्लाह लफ्ज क्या है, रहमान, क्योंकि वो रहमान है, अल्लाह का लफ्ज नहीं आया, रहमान है ना, इसलिए ढील दे रहा है। देखो अल्लाह ताला ने अबू सुफियान को ढील दी, ढील दी, ढील दी, ऑलमोस्ट तकरीबन 20 साल हो गए थे जब वो ईमान लेकर आए। अल्लाह इंतजार करता है कि तुम वापस आ जाओ, क्योंकि वो रहमान है और तुम्हें अजाब नहीं देना चाहता। फिरौन को भी ढील मिली थी, लेकिन उसने इस ढील को हमेशा की समझ लिया, वो बच्चों को जिबा कर रहा था उसको ढील मिली हुई थी, वो औरतों को लौंडियां बना रहा था उसको ढील मिली हुई थी, वो बनी इसराइल पे जुल्मो सितम कर रहा था उसको ढील मिली हुई थी, अल्लाह ने नहीं पकड़ा उसको, ढील दी, ढील दी, ढील दी, लेकिन फिर बस इनाफ इज इनाफ, फिर उसके बाद वो पकड़ता है। हत्ता कब तक ढील देता है, हत्ता यहां तक कि इजा रऊ मा युआदूना इम्मल अज़ाब व इम्मल सआता, जबकि वो देख ले वादे जो उनसे वादा किया जाता है उसको, किसका वादा किया जाता है, जब तक वो वादा देख ले चाहे तो अजाब का, दो में से एक चीज मिलेगी, चाहे तो अजाब आ जाएगा या क्यामत आ जाए, लेकिन फिर उनके ऊपर अजाब आ गया, या क्यामत का मतलब क्या, क्यामत तो अभी तक नहीं आई। ये क्यामत आपको हदीस से पता है, क्यामत हर इंसान की उस वक्त शुरू हो जाती है जब उसको मौत आती है, तो या तो उनको मौत आ जाए उनकी तबीयत, क्यामत अगर जब क्यामत का वक्त आएगा तो क्यामत आ जाएगी, तो या तो उनको उनकी मौत ही आ जाए या उनके ऊपर अजाब आ जाए, अल्लाह उस वक्त तक ढील देता है। आपने देखा है ना वो कौमें आई, अल्लाह ने उनको ढील दी, ढील दी, अब वो समूद जो है वो ऊंटनी को भी पूंछे काट दी, तब अल्लाह ने अजाब में पकड़ा, उससे पहले उनको ढील दी हुई थी, उन्होंने ऊंटनी देख के भी नहीं माना था। तो या तो ढील देने का ये होता है कि उस वक्त तक ढील दी जाती है, या तो इंसान ईमान ले आता है, मुश्रिकीन ने मक्का थे उनमें से कहीं ईमान ले आए, या फिर अगर नहीं वो आते तो फिर जो अल्लाह ने वादा किया है अजाब का कि नहीं मानोगे तो अजाब आएगा, तो या तो अजाब आ जाएगा या फिर उनके ऊपर मौत ही आ जाएगी, और मौत के साथ ही उनकी सजा शुरू हो जाती है। फिर ये नहीं है कि क्यामत तक का इंतजार हो रहा है, साथ ही उनका अजाब शुरू हो गया। असयालमूना मन हुआ शर मकान वाद आफु जुन्दा। अल्लाह ताला ने फिर जवाब दिया इस बात का कि तुम कह रहे हो ना कि अय्युल फरीकैनी खैरु मकाम व अहसनु नदिया, पता चल जाएगा कि कौन है दोनों ग्रोहों में से जिसको अच्छा मकाम मिलता है आखरत में भी जाके और जिसकी कंपनी अच्छी होती है। ये तो तुम अभी कहने लगे हो कि बड़ा हमें अच्छा मिलेगा, अच्छा मिलेगा, जल्दी पता चल जाएगा हम दोनों में से किसको अच्छा मिलता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया हाँ ये जब आएगा ना फिर ये तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा कि किसका मकाम बदतरीन था और किसका ज्यादा कमजोर था लश्कर। ये दो चीजें ही होती है ना जो इंसान के लिए नशे का काम करती है, उसका फखर और गरूर, और ये इतना बढ़ जाता है। अच्छे भले भी लोग होते हैं ना वो भी तकब्बुर के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। पिछले जमाने में भी ऐसे ही होता था, जिनके बड़े बड़े सरमायादार, बड़े बड़े हुकूमतों वाले, सुल्तनतों वाले, वो इस वजह से कि हमारा स्टेटस बहुत है, इस वजह से कि हमारे पास माल बहुत है, उन्होंने बहुत लोग हैं जो हमारे कॉन्टेक्ट हैं, जो हमारे साथ हैं, जो हमारी कंपनी है, जो पावरफुल लोग हैं वो हमारे वो हैं, बड़े सरदार हैं हम, इन चीजों ने उनको इतना गुरूर में मुब्तला कर दिया था कि वो यानी अब वो कहते थे कि आखिरत में भी हमें ऐसा ही मिलेगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये भी जल्दी ही पता चल जाएगा कि इसका बदतरीन है मकाम और किसके पास सबसे कमजोर लश्कर है। तुम कहते हो ना आहसन व नबिया, वो तुम बड़े कॉन्टेक्ट में पकड़ करते हो, तुम देखना कि जिसका कमजोर लश्कर है यानी जो तुम्हारी सपोर्ट जुंद जो है ना, लश्कर मतलब ये नहीं कि कोई फौज ही हो, मतलब तुम्हारी जो सपोर्ट है वो कितनी कमजोर है। जिन जिनको तुम आसन नदिया कहते थे ना वो कहीं मिलेंगे ही नहीं, वो सब गायब हो जाएंगे, तुम अकेले ही रह जाओगे। उस वक्त पता चलेगा जब अजाब आएगा या क्यामत आएगी या इंसान की अपनी मौत ही उसकी क्यामत बन जाएगी। तो जो ही इंसान की मौत आती है ना उसी वक्त ही पता चल जाता है कि क्या हालात है, क्या मेरा स्टेटस है, क्या मेरे साथ कितने लोग हैं, वो भी पता चल जाता है। तो ये दुनिया की चंद रोजा नियमतों और दौलतों से धोखे में ना आ जाना, ना दुनिया के ये माल रहते हैं और ना यहाँ की चीजें कभी साथ रहती हैं, ये ऐसी हकीकत है, बड़ी ही जल्दी खुल जाती है। कितने दौलतमंदों के नशे खत्म हो गए जब मौत आई, और कितने जो शान और शौकत के ढेर जिनके लगे होते थे कितने ही वो जमीन पे आ गए। तो ये जो इन चीजों से कभी भी इंसान धोखा ना खाए। अगर आपके पास कितना भी है ना, कभी इस चीज को ना सोचें कि पता नहीं ये सारा वक्त रहना है या मेरे साथ ही होगा या मैं ये पता नहीं इसी तरह मेरी जिंदगी चलती रहेगी और ऐसे ही नहीं, बहुत जल्दी ये चीजें चली जाती हैं। अल्लाह अकबर। जैसे किसी का वाकया आता है कि मुखातिल बिन सुलेमान एक दफा खलीफा मंसूर के दरबारे खिलाफत में हाजिर हुए तो खलीफा ने उनसे कहा कि मुझे कुछ नसीहत करें। तो फरमाने लगे कैसी नसीहत सुनोगे, आंखों देखी या कानों सुनी। मंसूर ने कहा कि आंखों देखी नसीहत करें, खलीफा था वो। तो उन्होंने कहा है अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को अल्लाह ताला ने 11 बेटे अता फरमाए थे, और जब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज फौत हुए तो इनका कुल तरका जो कुल उन्होंने छोड़ा था ना, असासा जिसको हम कहते हैं कि लोगों के बड़े बड़े आसन हुआ असासा थे, तो उनका कुल असासा जो था ना वो 18 दीनार थे सिर्फ। 5 दीनार का कफन लिया गया, 4 दीनार से कब्र ली गई और दफन वगैरह की कीमत दी गई, बाकी पैसे बेटों में तकसीम कर दिए गए। ठीक है, और क्या बचा होगा सोचे, 5 या 4 9 तो यही होगा, क्या बचा होगा, एक एक दीनार भी नहीं किसी के हाथ आया। और हशाम बिन अब्दुल मलिक को भी अल्लाह ने 11 ही बेटे दिए, और उनके मरने के बाद उनके हर बेटे को 10-10 लाख दीनार तरका मिला, 10-10 लाख। अल्लाह की कसम है अमीरुल मोमिनीन, मैंने अपनी आंखों से उमर बिन अब्दुल अजीज के बेटे को एक दिन 100 घोड़े जिहाद के लिए अल्लाह के रास्ते में सदका करते हुए देखा है, और अपनी इन्हीं आंखों से हशाम के एक बेटे को बाजारों में भीख मांगते हुए देखा है। अल्लाह अकबर, ये बड़ा जल्दी नशा टूट जाता है, ये बड़ी जल्दी इस दुनिया में ही बार दफा पता चल जाता है इंसान को, आखरत जो आनी है तो वो तो आनी है, जब मौत आनी है तब तो पता चलना ही है कि खाली हाथ रह गए। इस दुनिया में भी अल्लाह ताला दिखा देता है कि जिन चीजों पे तुम फखर कर रहे हो ना, ये स्टेटस और माल और मेरी कॉन्टेक्ट, ये बड़ी जल्दी खत्म हो जाते हैं। देखो कितनी बस्तियां हमने तबाह की, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा, यानी दुनिया में भी ये हो सकता है और मौत आते ही हो सकता है। ये जिनको तुम गरीब और ऐसे सोचते हो ये जन्नत के आला मकामात पे होंगे, और जिनको तुम सोचते हो कि वो ये कैसे, इनको तो कुछ नहीं मिलना, वो देखो कि कहां पे होंगे और तुम कहां होगे, बदतरीन मकाम में।